कथा का एक अंश था। फिर कथा का जो दूसरा अंश है वो इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, जहाँ अनेक देश हैं, उन देशों में आजकल तो भारत को देश माना जाता है, पहले मालव देश, अंग देश, बंग देश, कुरु जंगल देश, ऐसे देश थे। तो उस समय मालव देश की राजधानी उज्जैन ही नगरी थी। आज भी उज्जैन नगर मालवा में ही आता है। तो उस उज्जैन नगरी के राजा प्रजापाल की युगल पुत्रियाँ सुर सुंदरी और नैना सुंदरी दोनों भिन्न भिन्न स्थानों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और नैना सुंदरी आर्य का जैनमती माता जी के पवित्र साहित्य में शिक्षा के साथ साथ अनेक विद्याएं पढ़ती हैं, कलाएं सीखती हैं और संस्कार प्राप्त करती हैं। जब मैना सुंदरी वापस घर लौट के आती है तो उनकी जो बड़ी बहन थी उसका विवाह कौशाम्बी के राजकुमार हरिवाहन के साथ होता है। समय निकलता चला जाता है और किसी दिन अष्टांगिका में मैना सुंदरी जब पिताश्री के निकट श्री जी का दंडोदक लेकर आती है तब पिताश्री पूछते हैं ये क्या है। मैना सुंदरी दंडोदक की महिमा का आद्योपांत वर्णन जैसा जन्माभिषेक का चित्रण आरिका माता जी से सुन रखा था पिताश्री को सुना देती है। पिताश्री पुत्री की भाषा शैली और प्रस्तुति के ढंग से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर पुत्री की विद्वत्ता का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछ बैठते हैं बेटी ये भाग्य क्या होता है, ये पुण्य क्या होता है। तब जो इस काल में पुण्य का विवेचन करने वाली व्याख्याएं उपलब्ध हैं आज भी जो उस काल में 20वें तीर्थों का निर्माण के समय श्रीपाल मैना सुंदरी को ज्ञान दिया जाता था महावीर स्वामी के पश्चात वह ज्ञान सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहा लेकिन फिर काल दोष से श्रुत केवलियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। पंचमकाल में भगवान महावीर स्वामी जिस दिन मोक्ष गए उस दिन गौतम स्वामी प्रथम गणतंत्र केवल ज्ञान करने लगे और गौतम स्वामी जब मोक्ष गए तब सुधर्म आचार्य केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। जब वो मोक्ष चले गए तब जम्बू स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और मथुरा से जब जम्बू स्वामी निर्वाण धाम को सिधारे तब किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर अनुबंध केवलियों का क्रम उल्टा अनुबंध केवलियों में श्रीधर नाम के केवली भगवान हुए जो कुंडलगिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए और उसके पश्चात केवल ज्ञानियों की परंपरा का विच्छेद हो गया। अंतिम अनुबंध केवली जम्बू स्वामी और अंतिम अनुबंध केवली श्रीधर केवली थे उसके बाद फिर कोई केवली नहीं है। उनका जन्म चतुर्थ काल में हुआ था मोक्ष पंचम काल में। अब विष्णु आचार्य आचार्य पापराजे आचार्य गोवर्धन स्वामी और उनके शिष्य भद्रभाव स्वामी ऐसे पांच मुनिराजों द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ और पूर्ण ज्ञान होने के कारण शास्त्रों की अपेक्षा उससे परे कोई शास्त्र होता नहीं। बारह गुणों से परे वो पांच ऋषिराज श्रुत केवली के रूप में विख्यात हुए और आचार्य भद्रभाव स्वामी के पश्चात श्रुत केवलियों की परिपाटी विच्छिन्न होगी समाप्त होगी। फिर ज्ञान घटता 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 अंग और पूर्वों से रहित हो गया और अंग पूर्वों के कुछ अंश लेकर गिरिनगर की चंद्र गुफा में विराजमान आचार्य भरसेन स्वामी विराजमान थे। उन्होंने महिमा नगरी में आयोजित साधु सम्मेलन में अपना एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा कि कोई भी दो कुशाग्रवृत्ति साधु मेरे निकट तत्काल प्रेषित करें, मेरा ध्यान मेरे साथ ही नष्ट न हो जाए। पश्चिम बंगाल के हिंदू मुनियों को भी उस ज्ञान का लाभ हो, इसलिए मैं संलग्नासक पूर्व अपना ज्ञान उन दो कुशाग्रवृत्ति मुनियों को देकर उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, श्रुति की रक्षा करना चाहता हूँ। महिमा नगरी के संघ सम्मेलन के प्रमुख आचार्य महासेन थे, उन्होंने वहाँ उपस्थित अनेक मुनिराजों में से दो मुनियों का चयन किया, एक क्षत्रिय वंश के हैं और दूसरे वैश्य वंश के। क्षत्रिय वंश वाले जो मुनि थे नरवाहन उनका नाम था और वैश्य वंश वाले जो थे उनका नाम सुबुद्धि। नरवाहन राजपुत्र थे, सुंदर सौम्य शरीर थे और सुबुद्धि मुनि वैसे तो सर्वान शुभ लक्षणों के धारक थे, किंतु उनके दांतों की पंक्तियाँ कुछ अव्यवस्थित थी, आगे पीछे थी। बहुत लोगों के दांत थोड़े आगे पीछे रहते हैं तो उनके भी वैसे ही थे। दोनों मुनिराज वहाँ से प्रस्थान करते हैं और जब आचार्य दर्शन के निकट पहुँचने वाले होते हैं तब रात्रि के अंतिम प्रहर में मनोहर प्रहर में जिस प्रहर में तीर्थंकर की माताएं सोलह स्वप्न देखती है, जिस प्रहर में श्रीपाल की माता प्रतुलरथा ने दो सुंदर स्वप्न देखे थे सुमेरु पर्वत और कल्पतरु, उसी प्रहर में आचार्य दर्शन स्वामी जब निद्रा में निमग्न थे उनको एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। एक श्वेत वृषभ जिसके कंठ में बड़ा सुंदर घंटा लटक रहा है और जो आभूषण भी धारण किए हुए हैं, जिसके सींग के ऊपर भी कुछ सजावट है और जिसके पीठ पर भी एक वस्त्र है, ऐसे सुंदर वृषभ को उन्होंने अपने स्वप्न में देखा। आदिनाथ भगवान का चिन्ह होता है वृषभ, उसको देखा। वो वृषभ स्वप्न में उनके निकट आया और निकट आकर उसने तीन प्रदक्षिणाएं लगाई और चरणों में नमस्कार किया और वो वृषभ अकेला नहीं, उसके साथ एक और वृषभ था बिल्कुल उसके ही समान। तो दो बैलों ने सपने में दर्शन आचार्य की परिक्रमा लगाकर उनके चरणों में नमस्कार किया। जैसे निद्रा भंग हुई उन्होंने स्वप्न के फल का विचार कर लिया, विद्वान तो थे वो जानते थे कि इस स्वप्न का क्या फल होगा, समझ गए कि आज मैंने जिनको बुलवाया था ऐसे दो साधु यहाँ पहुँचने वाले और जब साधु आ गए तीन दिन तक सामान्य प्रतिपत्ति दी, सामान्य विनय का व्यवहार चलता रहा और उसके बाद फिर दोनों साधुओं ने चरणों में नमस्कार करके प्रार्थना की कि हम इस उद्देश्य से आपके श्री चरणों में आए हुए हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। तब आचार्य दर्शन स्वामी ने कहा सुट्ठु बद्धम, सुट्ठु बद्धम प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सुट्ठु यानी बहुत और बद्धम का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात अलग है कि इसका हिंदी अनुवाद लिखते समय पंडित जी ने आशीर्वाद शब्द का प्रयोग किया है, जबकि वो आशीर्वाद नहीं था, एक शुभोक्ति थी, बहुत अच्छा इतना मात्र कहा था उन्होंने। और उसके बाद यद्यपि वो जानते थे कि स्वप्न के अनुसार यही पात्र है उस विद्या के, लेकिन फिर भी आगम के वचनों का स्मरण करते हुए उन्होंने विचार किया कि परीक्षा लिए बिना किसी को विद्यादान न देना। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको विद्या सिद्धि का कार्य सौंपा, दो मंत्र दिए कुछ कुछ परिवर्तित करके और दो उपवास करने का आदेश देकर अपने पास लौटने के कहा। दोनों चले गए, दोनों में विद्या सिद्ध की, लेकिन विद्या जब अपने उस रूप में प्रकट हुई तब दोनों ने विचार किया कि ठीक है, जैन शास्त्रों में देवों का ऐसा स्वरूप तो नहीं होगा। एक देवी का दांत बाहर आ रहा था मुख से और दूसरी देवी एक आंख से काली थी। तो फिर दोनों ने समझ लिया कि संभवतः यही हमारी परीक्षा है और उन्होंने मंत्र का परीक्षण किया। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मंत्र में जिससे दांत बाहर वाली देवी प्रकट हुई है अक्षर अधिक है और दूसरे मंत्र में एक अक्षर कम है, तो इस मंत्र का अक्षर उस मंत्र में डालना था और बड़ी कुशलता से डालना था, अन्यथा काम बिगड़ जाता। तो उन्होंने बड़े विवेक के साथ उस अक्षर को ढूंढ निकाला और उस अक्षर को दूसरे मंत्र में विधिवत सम्मिलित किया और फिर जब उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया उस देवी की आंख प्रकट हो गई और इसके दांत गायब हो गए। ये घटना चली, इन्होंने गुरु के सामने निवेदित की। गुरु ने कहा कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, अब योग के मुहूर्त दिवस तिथि वार पर तुम्हारा विद्या अध्ययन प्रारंभ किया गया है, क्योंकि आगमन काल शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करने को कहा है। तो काल की शुद्धि इसी का नाम है। जो शठ प्रणालों की पहली पुस्तक में श्रोतावरा कथा में लिखे थे, तो इस तरह उनको दर्शेनाचार्य श्री ने अपने पास जो कुछ देने योग्य था वो सब दिया और जब उनको लगा कि अब मेरा समय निकट आ गया है और चौमासा भी निकट है, तो उन्होंने दोनों शिष्यों को आदेश दिया कि आपका विद्याध्ययन आज आषाढ़ सुदी 11 को पूर्ण होता है, आप लोग अन्यत्र चतुर्मास की स्थापना कीजिए। जैसे ही उनके मुख से ये निकला कि विद्याध्ययन आपका पूर्ण हुआ, तो देवों ने आ करके बड़ा उत्सव मनाया, चलो पंचम काल में यह शुद्ध ज्ञान सुरक्षित हो गया। और उत्सव मनाकर उन्होंने एक मुनिराज जो थे जिनका नाम नरवाहन था, उनकी 8 प्रकार के जो व्यंतर देव होते हैं उनमें से भूत जाति के जो व्यंतर थे उन्होंने बड़ी भारी पूजा की। और दूसरे जो मुनि थे सुबुद्धि देवों ने उनकी दंत पंक्ति को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया, पूरे गांव एकदम व्यवस्थित कर दिया। तब इन घटनाओं को देखकर आचार्य धर्मसेन स्वामी ने नरवाहन मुनि का नाम तो रख दिया भूत बलि। और जिनके दांत अस्त व्यस्त थे और इस समय फूलों के समान शोभित हो रहे थे उनका नाम रख दिया पुष्पदल। और फिर ये दोनों गुरु भाई आचार्य पद को प्राप्त हुए और फिर दोनों ने प्रथम चतुर्मास को साथ में अंकलेश्वर में संपन्न की और फिर पृथक होने के बाद जब आचार्य पुष्पदल स्वामी को ऐसा लगा कि अब मेरा समय भी अधिक नहीं रहा, तो उन्होंने 20 प्रवृत्तनाओं की रचना करके उसको लिपिबद्ध कर लिया और अपने भांजे को दीक्षा प्रदान करके, जिन पालित उनका नाम था, दीक्षा प्रदान करके वो 20 प्रवृत्तनाओं के सूत्र जिन पालित मुनि के हाथ में लेकर कहा कि मेरे गुरु भाई आचार्य भूत बलि जी के पास ही पहुँचा देना, वो बचा हुआ कार्य संपन्न करेंगे। वैसे ही हुआ आचार्य बुद्ध वाले स्वामी की सारी बातें जानकर फिर संपूर्ण षटखंडावन की रचना संपन्न की और जेठ सुख पंचमी के अंदर चतुर्विध संघ सानिध्य में उस शास्त्र की लिपिबद्ध शास्त्र की भव्य पूजा आयोजित की गई। तब से उस पंचमी को शुद्ध पंचमी के नाम से आज तक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये शुकावदार कथा का संक्षिप्त चित्रण था और आज धवला नाम की एक टीका षटखंडावन पर उपलब्ध होती है, लेकिन षटखंडावन की सबसे प्रथम टीका कहते हैं आचार्य कुंदकंद स्वामी ने लिखी थी जिसका नाम था परिलम्ब, संस्कृत में कहेंगे परिकर, लेकिन वो आज अपने दुर्भाग्य से अनुपलब्ध है। फिर इसके बाद एक टीका आचार्य सनंतभद्र स्वामी ने लिखी थी जिसका नाम था विजय धवला, विजय धवला वो भी अनुपलब्ध हुई। और फिर आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला नाम की जो टीका लिखी 72,000 श्लोक प्रमाण, 72,000 श्लोक बहुत बड़ी मात्रा होती है, इतनी विशाल जो धवला की टीका है उसका प्रकाशन जो हुआ है अनुवाद के साथ वो इस तरह की जो यहाँ पर शास्त्र विराजमान है पद्मावती पंचमी छिंदा इस आकृति में 16 पुस्तकें इतना विशाल ग्रंथ षटखंडावन और उसकी टीका धवला आज अपने सौभाग्य से उपलब्ध है। लेकिन उसके मर्म को जानने वाले इस पृथ्वी तल पर इन्हें गिने होंगे। आचार्य कुंदकंद स्वामी ने फिर अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, आचार्य सनंतभद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, अकलंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, यदुषक स्वामी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आचार्य होंगे इस पंचम काल में और वो ज्ञान का भंडार भर कर अपनी अवधि पूर्ण करके काल कवरित हो गए, यहाँ से विदा हो गए। तो आज जो ज्ञान अपने पास उपलब्ध है थोड़ा है, लेकिन उस समय मैना सुंदरी ने अपने पिताश्री के प्रश्न का जो उत्तर दिया था वही था कि पुण्य तीन श्रेणियों का, प्रथम श्रेणी वो है जो भावात्मक है, द्वितीय श्रेणी वो है जो द्रव्यात्मक है और तृतीय श्रेणी है फल। तो पुण्य भाव जिसको शुभोपयोग कहते हैं, जिसको शुभ परिणाम कहते हैं, जिसको भाव पुण्य भी कहते हैं, वह क्या वस्तु है? तो उसका समाधान है कि जिन भावों से जीव को पुण्य कर्म का आश्रम बंद होता है उस भाव को भाव पुण्य कहते हैं, शुभ भाव। ये मंद कषायात्मक होता है और इसमें गुणस्थान अनुसार उदय उपशम क्षय उपशम क्षय आदि अनेक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें भावों की होती है कि जिन भावों से जीव पुण्य का पात्र बन जाए वो भाव पुण्य है। और वो भाव कौन सा भाव है? प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकंद स्वामी ने लिखा है जो जानाति जिनिन्दे पेच्छति सिद्धे तहे अणगारे जीवे सुसाणुकंपो हो रोगो सो सुहो दस। बोले कि वो एक ऐसा भाव होता है जो अरहंतों को जानता है, सिद्धों को मानता है, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को पहचानता है। ध्यान दिया, एक ऐसा भाव जीव के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा भाव जो अरहंतों को जानता है, सिद्धों को मानता है, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को पहचानता है और सब जीवों के प्रति जिस भाव में अनंत अनुपा होती है दया होती है, वह शुभोपयोग है, शुभोपयोग। और यह शुभोपयोग पुण्य का कारण है, इसलिए इसको भाव पुण्य कहते हैं। फिर दूसरा जो द्रव्य पुण्य है वो क्या वस्तु है? मैंने सुन लिया पिताश्री से कह दिया कि जब जीव भाव पुण्य को प्राप्त होता है तब इसी स्थान पर विद्यमान कुछ परमाणु उसकी आत्मा के साथ बंध जाते हैं। वे परमाणु जीव नहीं होते, वे परमाणु उद्गत द्रव्य हैं, लेकिन वे परमाणु कारण वर्णा के परमाणु कर्म पर्याय को प्राप्त होकर जीव के साथ बंध जाते हैं, उसको द्रव्य पुण्य कहते हैं। सद्वेद्य शुभाय नाम गोत्राणि पुण्यम। देखिए आज अपने सौभाग्य से तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में एक ऐसा सूत्र उपलब्ध है जिसमें द्रव्य पुण्य कितने होते हैं, उसका क्या हिसाब किताब होता है, उसका संक्षिप्त विवेचन है। सद्वेद साता वेदनीय शुभायु मनुष्य देव और त्रियंशायु। शुभायु त्रियंश गति अशुभ गति है, लेकिन त्रियंश आयु शुभ आयु है। और शुभ नाम करना, जैसे सुस्वर नाम करना, आवाज बड़ी मधुर होती है, सुभग नाम करना, सब लोग उसका स्वागत करते हैं, सबको प्रिय होता है। शुभ नाम कर उसका आकार प्रकार बड़ा सुंदर होता है। और इसी तरह शुभ वर्ण, शुभ गंध, शुभ स्पर्श इत्यादि अनेक प्रकार के शुभ नामकरण होते हैं। यशस कीर्ति नाम का भी शुभ नामकरण होता है जिससे उसकी बड़ी प्रसिद्धि होती है। इसी तरह सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर नामकरण। जिस पुण्य का संचय करने वाला जीव असंख्यात जीवों में से एक होता है, असंख्यातों में एक, और वह तीर्थंकर के अष्ट महाप्रातिहारिक वैभव को प्राप्त होता है। ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है और शुभ गोत्र उच्च गोत्र है। इस तरह अघाती कर्मों में ही ये शुभ कर्म पाए जाते हैं, घातिया कर्मों में एक भी कर्म शुभ नहीं होता, सारे पाप होते हैं। घातिया कर्म कितने होते हैं? चार। और चार घातिया कर्मों के अगर भेद देखे जाए तो 28 मोहनी के भेद, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण और 5 अंतरा। इस तरह कुल 47 प्रकृतियां होती हैं, सारी की सारी पाप हैं। और पुण्य फल वो होता है जिसके प्रभाव से यह जीव संसार में सांसारिक सुख को प्राप्त करता है। हे पिताश्री, इस जगत में सारे जीव कर्म के आगे कठपुतली के समान है। और स्यात्वाद नाम की शैली होती है, वचन पद्धति होती है, उसको वहां पर अपेक्षित करके कहा जाए तो ये कहा जा सकता है, हे पिताश्री, सारा जगत स्यात् कलाधीन है। जो भी उपकार है वो कर्म का है, जो भी अपकार है वो भी कर्म का है। अव्ययान अव्ययान कम्मम भी सुहा सुहम गुणत। कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ में स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि लिखते हैं कि जीव का उपकार और अपकार सब कर्म करते हैं। तब इतना सब विवेचन सुनने के बाद फिर पिता पुत्री की ओर देखता हुआ सोचता है कि इसके कहने का भाव क्या है, क्या कहना चाहिए। फिर पुत्री और भी समझा दी पिताश्री को कि जिस प्रकार पुण्य है उसी प्रकार दूसरा कर्म पाप, वो भी भाव कर, द्रव्य कर और कर्म फल के भेद से तीन प्रकार का है, जैसे भाव पुण्य, द्रव्य पुण्य और पुण्य फल, ये तीन भेद होते हैं। वैसे भाव पाप, द्रव्य पाप और पाप फल, ऐसे तीन प्रकार होते हैं। और फिर उसका भी विस्तार से वर्णन करते हैं, अतोन्यत पापम। तो इस तरह संसार पुण्य और पाप से जकड़ा हुआ है और पुण्य पाप से बाहर निकलने वाले पहले तो पुण्य से बाहर निकलते हैं, ये सच है नहीं? पहले पाप से बाहर निकलते हैं, पहले अगर पुण्य से बाहर निकल जाए तो फिर पाप में फंस जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पहले पापों को छोड़ते हैं और उसके बाद ऊपर की भूमिका में पुण्य स्वयं छूट जाता है और पाप और पुण्य से परे होकर फिर वो शुद्ध भाव में जाकर आत्मा का कल्याण करते हैं। समझते तो शुरू से सब कुछ है लेकिन प्रक्रिया जो है वो तो अपने क्रम से ही होती है। तो इस क्रम से जीवों का कल्याण होता है, सारा जगत पुण्य और पाप के अधीन है। तब पिता एक अचंभित मुद्रा बना करके, सारे मंत्रीजन और सारे लोग बैठे हुए थे राज दरबार में, और फिर इतनी लंबी चौड़ी बात पुत्री ने कर दी। पिता बोलते हैं कि बस बस अब शांत रहो, बहुत लंबा हो गया उपदेश। पुत्री थोड़ा संकोच कर रही है, कहती है पिताजी आपने प्रश्न पूछा तो मैंने मात्र उत्तर दिया, मैंने अभी उपदेश नहीं किया। तो फिर राजा पूछते हैं कि बेटी क्या तुम ये समझती हो कि सब कुछ कर्मों से होता है? क्या माँ बाप अपनी संतान का कुछ भी भला नहीं करते? क्या मेरे कारण तुम्हारा कोई उपकार नहीं हुआ? मैंने सुन ली, कहती पिताजी मेरे कहने का ऐसा अभिप्राय बिल्कुल नहीं था, आपका महान उपकार है मुझ पर, किंतु पिता एकदम थोड़ा गर्म होकर बोलते हैं किंतु क्या, मेरा उपकार है तो मेरा उपकार है, किंतु क्यों बोल रही है? बोले तो किंतु पिताश्री यदि मेरा पुण्योदय न होता तो मुझे आप जैसे श्रेष्ठ पिता कहां से मिलते? मैं कहीं किसी दरिद्र के यहां पैदा हो जाती और अनेक संकटों से ग्रस्त रहती, दुख सहन करती रहती, मुझे आप जैसे पिता पुण्य से ही प्राप्त हुए। पिता बोलते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि तू कर्मों को ही सब कुछ मानती है। तो मैंने सुंदरी कहती है कि किसी दृष्टि से सर्वथा नहीं, आपका उपकार उस दृष्टि से मुझे मान्य है और कर्मों का उपकार एक अन्य दृष्टि से मुझे मान्य है, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन इतनी बातें सुनने की राजा को कभी आदत नहीं थी, आज पहली बार ये सब सुनकर राजा अंदर ही अंदर कुपित हो जाता है और पुत्री के प्रति रुष्ट होकर के मन ही मन कुछ अशुभ लेशिया में जाकर विचार करना प्रारंभ कर देता है। मंत्रीगण राजा के मुख मंत्रा को देखकर अभिप्राय को ताड़ लेते हैं और फिर दूर से ऐसा संकेत करते हैं कि नहीं रहे राजकुमारी, इस पर आप नाराज मत होइए। संकेत से बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, राजा समझते हुए भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर रहा है। और फिर मन ही मन राजा सोचते हैं कि इसके भाग्य की मैं कभी न कभी परीक्षा अवश्य होगी, क्योंकि इसके कर्मों पर बड़ा विश्वास है, मैं इसकी परीक्षा अवश्य होगी। और फिर मैना सुंदरी की और भी कई बातें जो जो राजा ने सुनी थी, उससे राजा को ऐसा लगा कि ये अपने आप में कुछ घमंडी हो गई, इसने ज्यादा पढ़ लिख लिया इसलिए ये किसी को कुछ समझती नहीं। फिर अवसर देखकर एकांत में जो प्रधानमंत्री थे हमारे थे, उन्होंने राजा से निवेदन किया कि राजा आप उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। और एक बात और है कि आपका क्रोध तो शत्रुओं के प्रति पराक्रम दिखाने वाला है, ये तो आप अधिक प्रकार जानते हैं कि कभी भी कोई क्षत्रिय राजा पीठ दिखाने वाले को नारी पर, असहाय पर, दीन दुखी पर, साधु पर और निरपराध पर प्रहार नहीं करता। आपके मुख मुद्रा से ऐसा लगता है कि आप कुछ अनिष्ट विचार कर रहे हैं, आप इस विचार को छोड़ दीजिए, चलिए बाहर चलिए, कुछ वन भ्रमण आदि करके लौटेंगे, आपका मन भी बदल जाएगा, आप प्रसन्न होंगे। इस तरह राजा का अप्रसन्न पर रुष्ट होना उचित नहीं है। इतना सब बोलकर मंत्री राजा को ले गए बाहर वन भ्रमण के लिए ले गए, और राजा प्रजावान उज्जैनी बाहर निकल गए और भी बहुत दूर निकलते चले गए। मंत्री का कहने लगे कि राजा अब तो लौटने का समय हो गया, अरे मुझे अभी नहीं लौटना। राजा मानने को तैयार नहीं हुए, फिर दूसरे देशों में भी जाने लगे, तो वहाँ के जो राजा थे वो जानते थे कि बड़े पराक्रमी राजा हैं, उज्जैन के मालवा के नरेश थे, सब उनका स्वागत करते हैं। पर राजा ठहरने का नाम नहीं लेते, बढ़ते ही चले जाते हैं। तब फिर मंत्रियों को लगता है कि कहीं दूर भ्रमण का विचार करके निकल पड़े हैं, और संभव है पुत्र की बात उनको ज़्यादा बुरी लगती है इसलिए इस तरह चले गए। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने ही कुटुंबी की कोई बात ऐसी चुभ जाती है, बाहर वाले कुछ भी बोले तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अपने लोग कुछ बोल जाए तो फिर वो बात सहन नहीं होती। तो फिर मंत्रियों ने साथ दिया उनका, चलो ठीक है राजा को जहाँ तक घूमने जाना है जाना। अब भ्रमण करते करते अनेक दिन व्यतीत हो गए और वह पूरा का पूरा समूह, साथ में पीछे सेना भी थी, तो सारा समूह राजा की रक्षा करता हुआ बहुत दूर निकल गया और उनका प्रवेश अंग देश में हो गया। और जब अंग देश में उनका प्रवेश हुआ तो प्रवेश करके वहाँ की अद्भुत शोभा को वो देखते रह गए, क्योंकि वो अंग देश तीर्थंकर वासुपुज भगवान का देश था और भगवान के प्रभाव से जहाँ पांच कल्याण हुए वो भगवान के चंपा नगरी में, वहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। भ्रमण करते करते वो अकस्मात अनायास उस उद्यान के बाहर पहुँच गए जहाँ श्रीपाल और 700 साथियों का डेरा था। राजा अपने हाथी पर आरूढ़ थे और जब उस दृश्य को देखते हैं तो राजा को समझ में नहीं आता कि ये कैसा विचित्र दृश्य है। भिखारियों जैसे दिखने वाले ये मनुष्य, एक को तो राजा के समान सम्मानित कर रहे और बाकी सेवकों के समान सेवा में रत है। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर ये सारे के सारे बीमार हैं, वेशभूषा बड़ी सुंदर है लेकिन शरीर की स्थिति अत्यंत विवर्ण है, ये कौन है? तब ऐसा विचार करके राजा जो ही उस उद्यान में प्रवेश करने लगते हैं, त्यों ही श्रीपाल को एक द्वारपाल आकर के समाचार देता है कि मालवा के नरेश राजा प्रजापाल पधार रहे हैं। श्रीपाल ने कहा कि ओ राजा प्रजापाल, मैंने वहां के बारे में सुन रखा है, चलो चलो उनका भव्य स्वागत करें। श्रीपाल उनकर के खड़े हो गए, मुकुट बाजूबंद वगैरह सब आभूषण धारण करते हुए वो राजा का स्वागत करते हैं। राजा भी श्रीपाल का अभिवादन स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन? तब श्रीपाल कहते हैं कि आप बैठिए तो सही, कुछ हमारे भाव वगैरह तो स्वीकार कीजिए, फिर परिचय होगा, वार्तालाप होगा, सब कुछ होगा, आप विराजिए तो सही। तो एक अच्छे आसन पर उनको बैठाते हैं और सब लोग हवा की दूसरी तरफ बैठ जाते हैं ताकि वो वायु, दुर्गंधित वायु राजा को कष्ट न दे सके। फिर राजा के जो साथी थे उनका भी लोग स्वागत करते हैं सब, और फिर अच्छा एक मिलन हो जाता है और फिर परस्पर परिचय होता है। और श्रीपाल का पूरा परिचय सुनकर राजा प्रजापाल बड़ा आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि इतना बड़ा राजा है, अंगराज श्रीपाल है, मैंने सुना तो था इनके बारे में लेकिन आज इसने अपना राज किसी और को सौंप दिया है और स्वयं यहाँ पर इस उपवन में प्रजा से पृथक होकर व्याधि मुक्ति के उपाय कर रहा है। तो राजा ने ऐसे पूछा कि हे श्रीपाल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तुम ये तो बताओ कि राजघराने में बरसों तक रहने के बाद आज यहाँ रहते हुए तुम कैसा महसूस करते हो, तुम्हें कैसा लगता है? तो श्रीपाल ने कहा कि माता का वियोग तो बार बार सताता रहता है, पर क्या करो, जगत के सारे प्राणी कर्माधीन हैं। मेरे अशुभ कर्म का उदय आ गया इसलिए मेरी ऐसी दशा होगी, फिर जब कभी मेरे पुण्य का उदय होगा तो फिर स्थिति परिवर्तित भी हो जाएगी। राजा प्रजापाल बड़ा आश्चर्य, ये तो कोई भाषा बोल रहा है जो हमारी राजकुमारी बोलती है? विचार तो दोनों में एक जैसे रखते हैं। राजा पूछते हैं तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है? बोले कमी यही है, बस मैं माँ से दूर हूँ, प्रजा से दूर हूँ, और तो क्या कमी हो सकती है। हाँ एक बात जरूर है कि मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तो राजा प्रजापाल कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो। इस बात को सुनकर मंत्री को समझ गए कि राजा कुछ अनिष्ट निर्णय करने जा रहे हैं। तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा एक कुछ क्षण के लिए आपसे हम वार्तालाप चाहते हैं, व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और फिर काफ़ी समझाते हैं राजा, लेकिन राजा बोलते थे मेरी बात तो पूरी है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। और राजा श्रीपाल कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी छोटी राजकुमारी प्रदान करना चाहता हूँ। और श्रीपाल कहते हैं कि मैं भी वही चाहता था, पर आप मुझ पर इतने संतुष्ट हैं, पर फिर भी मुझे संकोच था कि मेरी ऐसी अवस्था में मैं अपने मुख से यह बात कैसे कहूँ। लेकिन आप बड़े उदार मना हैं कि इतने उत्तम विचार आप रखते हैं कि मनुष्य की बाहरी दशा को न देखकर आप उसके गुणों को पहचान कर, जो मेरे पास बहुत कम है फिर भी मेरे कुछ गुणों को देखकर आप इतना बड़ा निर्णय कर ले जा रहे हैं। राजा प्रजापाल कहते हैं कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं अपनी पुत्री तुम्हें अवश्य देता हूँ। और फिर मंत्री लोग तो अवाक रह जाते हैं कि अरे राजा ने हमें रोक दिया, लेकिन कितना खतरनाक निर्णय ले लिया, अब क्या होगा। पर अब तो कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि राजा के वचन तो राजा के वचन होते हैं। अब राजा कहता है कि हम अपनी नगरी को लौट रहे हैं और फिर तुम्हें हम आमंत्रित करेंगे और तुम्हारा भव्य विवाह हमारे राजकुमारी के साथ होगा। और उस समय जब राजा उज्जैनी की ओर लौटने को हुए, तब थोड़ा सा अपने दांत को दबाते हुए मनीमन विचार करते हैं कि अब उसके कर्मों की अच्छी परीक्षा हो जाएगी। मैंने किसी अवगुणी से अथवा अकुलीन से अपनी पुत्री का संबंध नहीं किया, इसलिए मुझे कोई दोष न दे। बस ऐसा ठान करके राजा अपनी नगरी लौट करके आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर सबको समाचार मिलते हैं कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। और सर्वप्रथम राजा एक निमित्त ज्ञानी को ज्योतिष को बुलाते हैं और कहते हैं कि विवाह का श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला जाए। और चूंकि श्रीपाल को भी उन्होंने आमंत्रित तो कर ही दिया था, तो उनका समूह भी धीरे धीरे उज्जैनी की ओर प्रस्थान कर रहा था। तब ज्योतिष ने जब मुहूर्त निकाला, बोले कि ये मुहूर्त सायंकाल को पड़ रहा है और ऐसा श्रेष्ठ मुहूर्त दोबारा लगभग 20-30 वर्षों के पश्चात फिर आएगा, उसके बीच में इतना अच्छा मुहूर्त नहीं आने वाला। उस समय लोगों की आयु भी लंबी होती थी, जैसे श्री राम की आयु लगभग 17,000 वर्ष के आसपास शास्त्रों में बताई गई है। आज अपन सुने तो बड़ा आश्चर्य होता है, पंचम काल ही 21,000 वर्ष है, तो इतनी लंबी आयु उस काल में होती थी। पर फिर भी राजा तो बेचैन था, उतावला था। राजा ने कहा कि नहीं, इसे प्रथम मुहूर्त में विवाह हो, हमें वो 20 वर्ष बाद वाला मुहूर्त, 30 वर्ष बाद वाला मुहूर्त बिल्कुल नहीं इष्ट, हमें इसी मुहूर्त में अपनी पुत्री का विवाह करना है। फिर पुत्री से कहते हैं कि पुत्री मैना सुंदरी, हमने तुम्हारा विवाह निश्चित कर लिया है। तो वो कहते हैं कि मैं धन्य हुई पिताश्री, माता पिता हमेशा अपने संतान का हित चाहते हैं, आपने जो कुछ निर्णय किया मुझे मान्य है। अब आपने जिसके साथ जिनके साथ मेरा विवाह निश्चित किया है वो ही इस जीवन में मेरे स्वामी होंगे और बाकी सब के प्रति मेरा आपके जैसा भाव रहेगा, सब मेरे पिता तुल्य होंगे, भाई तुल्य होंगे, पुत्र तुल्य होंगे। तब राजा कहते हैं बेटी इसमें तेरे भाग्य की भी परीक्षा होने वाली है। तो मैंने सुनी पूछती कि पिताश्री ऐसी कौन सी बात हो गई, मेरे भाग्य की क्या परीक्षा होने वाली है। मुझे सब कुछ स्वीकार है। तब फिर राजा गंभीर स्वर में अपनी पुत्री से कहता है कि मैंने तेरा विवाह एक कोड़ी के साथ निश्चित किया है। मैं सुन रही कहती हूँ कि आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, इस विषय में संस्कारित कन्याएं कुलीन कन्याएं कोई तर्क वितर्क नहीं करती। जिनके भी साथ उनके माता पिता उसका संबंध कर देते हैं वही उस भाव में उसके लिए देवता के लिए होता है, उसके लिए स्वामी होता है। इसमें मुझे कोई रंज नहीं है, यदि मेरे पति कोड़ी है तो मैं उनकी जीवन की सेवा करूँगी, आप निश्चित रहिए बताइए, मुझे कोई दुख नहीं। और जब ज्योतिष दक्षिणा दे रहे थे राजा तब मना कर देता है कि नहीं राजा मैं ये दक्षिणा नहीं ले सकता क्योंकि इस मुहूर्त में जो विवाह निर्धारित होता है यहाँ जो ग्रहों की स्थिति है और जो दृष्टियां हैं उनसे ये स्पष्ट सूचित हो रहा है कि आपने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ व्याधि से पीड़ित राजकुमार के साथ किया है, निश्चित किया है। इसलिए मैं ऐसे विवाह के लिए, ऐसे संबंध के लिए दक्षिणा नहीं ले सकता, ये बड़े दुख की बात है। आपकी राजकुमारी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक ज्योतिष हूँ, बस मैं वेतन नहीं लेना चाहता। तो वहाँ से चला जाता, जब प्रजाजनों को भी जानकारी मिलती है तो सब दुखी हो जाते हैं कि राजकुमारी मैना सुंदरी एक तो भोली प्रकृति की है और इसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, कितना बड़ा अनर्थ कर डाला राजा ने। राजा ने आदेश दिया कि उस मुहूर्त से पूर्व सारी नगरी को सजा दिया जाए, तो सब लोग नगरी की सजावट में लग जाते हैं राजा का आदेश पाकर। लेकिन वो उत्सव था या शोक कोई बाहर से आने वाले को समझ में नहीं आता था, क्योंकि सजावट तो उच्च कोटि की थी पर मुखमंडल सबके फीके थे, उतरे हुए थे। रानी निपुण सुंदरी को भी जब सब पता चलता है तब वो भी विचार करती है कि वो कैसी विचित्र बात है कि मेरे स्वामी ने ऐसा निर्णय किया, मुझसे पूछा भी नहीं। घर के अंदर की बात तो हमेशा अंदर के लोगों से पूछ कर की जाती है, लेकिन ये पुत्री का विवाह इन्होंने अपने मन से निर्धारित कर लिया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझसे नहीं पूछा, लेकिन विवाह संबंध एक कोड़ी के साथ किया ये अत्यंत खेदपूर्ण है। वो भी बहुत दुखी होती है, लेकिन मैंने सुंदरी के मुखमंडल पर कोई भी पीड़ा नहीं थी, वह बिल्कुल प्रफुल्लित थी और वह भारी समय, वह मुहूर्त अंततः आ पहुंचा और राजा को दौड़ हो रहा था कब फेरे बढ़ जाए, कब ये संस्कार पूर्ण हो और कब मैं इसको विदा कर दूं, यहाँ से मुझसे देखा नहीं जाता, अधिक बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। और फिर जब फेरे पड़ने लगे तो वैसे ही लोग रोते हैं बेटी की विदाई में। उस विदाई में जो आशीर्वाद हुआ इतिहास में कभी भी किसी विदाई में लोग इतना कभी नहीं रोते, सबके आंखों में आंसू, क्योंकि जब दूल्हे को सजा करके लाया गया तो मक्खियां मंडरा रही थी उसके आसपास, शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेप उपटन सुगंध लगाने के बावजूद उस भीषण दुर्गंध को दबाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। उसके 700 साथी दूर बैठे हुए थे और श्रीपाल उनको ये कहकर के आया था कि मैं जल्दी से काम संपन्न करके आता हूँ लौट कर, आप लोग खेद मत करना, अब अपनी ऐसी स्थिति है तो क्या करें, अपन भाग्य के मारे हुए हैं, इसलिए सब व्यवस्था इस तरह से देखनी पड़ती है। अब जब सारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ, जब विवाह पूरी विधि संपन्न हुई, तब तक राजा की कषाय नहीं थी। लेकिन एक सत्य है संसार का कि जीव का स्वभाव कषाय नहीं है। और कषाय कोई कितना भी करके देखे, एक ऐसा समय आता है जब उसका मन ठंडा पड़ जाता है। तो जब विदाई की घड़ी आई, तब तक राजा का क्रोध था, प्रतिशोध का भाव था। लेकिन जब श्रीपाल मैना सुंदरी को लेकर विदा होने लगा, तब राजा के विचारों में कुछ अजीब सा परिवर्तन आया। और राजा को ऐसा लगा कि ये मुझ पर कौन सा भूत सवार हो गया, मैंने ये क्या कर डाला, मैं पागल तो नहीं हो गया था, कहीं कोई बुरा स्वप्न तो नहीं है। अब वो विदाई बड़ी करुण थी, कुछ पंक्तियों में उसका वर्णन, सचमुच कर्म बड़े विचित्र होते हैं। सीता भीलो का पुराण से वनवास बन कर रोई, होन हार डाले नहीं तहती, लाख जतन करे कोई, जैसी करनी वैसी भरनी, कौन इसे ठुकराएगा, तीर्थंकर भी फल पाएंगे, कर्मोदय जब आएगा। किसे पता था यह सुकुमारी कोड़ी के संग जाएगी, राजकुमारी के जीवन में यह अंधियारी छाएगी, था विवाह भोली बेटी का डली गले में वरमाला, पिता सुता का शत्रु बन गया भारी बदला लेना, कर्मों का यह लेखा जोखा कोई समझ नहीं पाया, राजा की मति भ्रष्ट हो गई, रानी को रोना आया, सागर रोया नगरी रोई, पर्वत भी तब थर्राया, और विदाई की बेला में हृदय पिता का भराया। अब जब राजकुमारी श्रीपाल की पत्नी बनकर विदा हुई और वो आंखों से ओझल होने लगी, तब राजा को होश आता है कि मैंने भी क्या कर दिया। और अब इतना भारी पश्चाताप कि जिसकी कल्पना करना कठिन है, क्योंकि बचपन के सारे चित्र आंखों के सामने आते हैं कि वो छोटी सी बेटी है जिसको मैं गोद में लेकर खिलाया करता हूँ, जिसको मैंने विद्या पढ़ाने के लिए आर्यिका माता के पास छोड़ा था, और जिसको बहुत संभाल कर मैंने बड़ा किया था, और आज मैं ही इसका शत्रु बन गया। अंदर अपने महल में आकर एक सेज पर राजा सिर पकड़ करके बैठ जाता है, और रानी भी राजा का अनुकरण करते हुए वहीं आती है। रानी की आंखों में भी भारी आंसू थे, लेकिन रानी राजा की इस दशा को देखकर कुछ क्या क्या हो रहा है राजा को। तो पिछली स्वामी आप सिर पकड़ करके क्यों बैठे। तो राजा ने रोना आ जाता है और राजा कहते हैं क्या बताओ, मुझे आज कुमति ने लूट लिया, मैंने आज दुर्बुद्धि होकर कितना बड़ा अनर्थ कर डाला, मुझे लाख समझाए मंत्रियों ने, अपने जीवन को संकट में डालकर उन्होंने निर्भीक होकर मेरे निर्णय की निंदा की, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो गया। और उधर मैं ना सुनी जब उस देवी पर पहुँचती है, पति की सेवा करने लगती है, उज्जैनी के बाहर किसी उद्यान में श्रीपाल के सारे साथी ठहरे हुए थे, तो वहीं पर श्रीपाल के साथ मैं ना सुनी आया थी। और जो भी औषध उपचार आगे जो भी था वो सब अब मैं ना सुनी अपने हाथों में दे देती है। जो पहले सेवक लोग किया करते थे वो कार्य अब सती करना प्रारंभ कर देती है। और कुछ समय के उपरांत वहीं पर एक भवन का निर्माण हो जाता है जहाँ ठहर कर गुरु अपना समय व्यतीत करते हैं। और मैंने सुनी जो श्रेष्ठ राजवैद्यालय थे उनसे भी उपचार लेने करके आती है, हर प्रकार से पति की सेवा करती है, लेकिन कोई उपचार उस व्याधि पर रंच मात्र भी प्रभावशाली नहीं हो पाता। एक बार मैं ना सुनी जो देव दर्शन के लिए मंदिर जी जाती है, तो वो चिंताएं सिर पर लादे हुए जाती है, भगवान के दर्शन आदि सब कुछ करने के बाद श्री गुरु के चरणों की वंदना करती है और गुरु महाराज को प्रणाम करके थोड़ी देर उनके पास बैठती है। और गुरु महाराज समझ जाते हैं कि इस पर कोई विपत्ति है, पूछते हैं कि बेटी चिंतित क्यों है। तो वो कहती है कि गुरुवर चिंता का कारण है इसलिए मैं चिंतित हूँ, मेरे स्वामी सैकड़ों उपचारों के बावजूद किसी भी औषध से रोग मुक्त नहीं हो रहे, उनको भयंकर कुष्ठ व्याधि है, रात में जब सोते हैं करवट बदलते हैं तो उनकी त्वचा फट जाती है, कई बार तो मैं उनको संभाल लेती हूँ पर कभी कभी नहीं संभाल पाती, उनकी मुख से कराह निकल उठती है, मैं उनकी वेदना नहीं सहन कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ। सारे उपचार मैंने करके देख लिए लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्याधि का इस धरती पर कोई उपचार नहीं हो। गुरु महाराज कह रहे हैं पुत्री समय अधिक लगने के कारण तुम्हें निराशा हो रही है, तुम चिंता मत करो। जो ही गुरु के मुख से ये वाक्य बरसों बाद नैना सुंदरी को जब सुनने मिला, बेटी चिंता मत करो, तो एकदम मोहड़ा खिल उठता है, हाथ जोड़ करके एकदम आंखों में अश्रु थे, पूछती कि गुरुवर फिर मैं क्या करूँ, कोई उपाय तो होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं इससे तो चैन की आराधना है, इसके उत्कृष्ट मध्यम और जगह की विधियाँ होती है, तो सिद्ध चक्र की आराधना करो और उसके इस मंत्र जप। और गुरु महाराज मंत्र प्रदान करते हैं। मूलाचार्य ग्रंथ में लिखा है कि आचार्यों का एक कार्य मंत्र दान करना नहीं होता है। भक्ति जनवराण खीर जम संचय तम आय असाय विद्या मंदाय से चंदी, विद्या और मंद आचार्य इसे ग्रहण करने पर उनके आशीर्वाद से सिद्धि को प्राप्त होते हैं। गुरु के आशीर्वाद से वह सभी नियम ले लेती है और बहुत सारी बातें जो गुरु ने बताई थी वो हृदयंगम कर लेती है और कुछ बातें जो उन्होंने नहीं बताई थी वो अपने विवेक से समझ लेती है। और फिर कार्तिक माह जब आता है तब अष्टांग का पर्व में 8 दिन का उपवास करती है, उत्कृष्ट विधि। और 8 उपवास करके भगवान के अभिषेक का जो गंधोदक था वो लाकर अपने पति के ऊपर छिड़कती है। और फिर जो 700 वीर थे जिनको कुष्ठ व्याधि ने ग्रसित कर रखा था उन पर भी छिड़कती है। और आचार्य सकल कीर्ति जी ने श्रीपाद चरित्र में बड़े सुंदर श्लोक लिखे हैं कि जो जो दिन निकलते चले गए श्रीपाल और उनके साथियों की वह कोई भी कांति पुनः लौटने लगी और 8 दिन पूर्ण होने के पश्चात श्रीपाल पुनः अपने भूतपूर्व अनुपम सुंदर रूप को प्राप्त हो गया और वो सारे 700 कुष्ठ रोगी पूर्णतः रोग मुक्त हो गए। 8 दिन गंधोदक के छिड़काव से ऐसी स्थिति होगी और इसके बाद इसका इतना हर्ष था सती के हृदय में और श्रीपाल को भी बड़ा हर्ष था। और श्रीपाल नैना सुंदरी से कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं समझ रहा था कि मेरे पाप का उदय है लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरे जैसा पुण्योदय संसार में और किसी का नहीं है, मुझे तुम मिल गई। अगर जो पूर्व में पाप का उदय था तो उसका परिणाम शरीर पर था लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब ठीक हो गया। तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे उपवास और तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं ने ये चमत्कार किया कि आज मैं गंधोदक के प्रभाव से बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। अब सारे के सारे इतना बदल गए कि उनके उस रूप को और इस रूप को कोई मान ही नहीं सकता कि ये वही। तब फिर एक दिन श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों मंदिर जी में भगवान की उपासना के लिए जाते हैं और अच्छे ढंग से भगवान की उपासना करके वहाँ जो विराजमान साधु थे उनके चरणों में बैठ जाते हैं। अब भाग्य का ऐसा संयोग था कि उसी दिन उस जिनालय में मैना सुंदरी की माता रानी निपुण सुंदरी रथ लेकर के दर्शनार्थ आ जाती है और जब भगवान के दर्शन करने की बात गुरु की ओर उठती है तो एक क्षण में अपनी पुत्री को देख करके पहचान लेती है लेकिन अपने जमाई को नहीं पहचान पाती। उसके मन में अनेक प्रकार की अनिष्ट शंकाएं उत्पन्न होती है कि मेरी पुत्री बड़ी धर्मात्मा थी, संस्कारित थी, विद्यावती थी, विदुषी थी लेकिन क्या देख रही होगी। इसने उस बेचारे कोड़ी को कहाँ धोखा दे दिया और ये किस परपुरुष के साथ बैठकर यहाँ पर मंदिर में गुरु के सामने अपना मुंह लेकर के बैठी हुई है। एकदम आग बबूला हो जाती है और उसी समय मैना सुंदरी की दृष्टि उन पर पड़ती है और उनकी मुख मुद्रा को पढ़कर मैना सुंदरी समझ जाती है कि इनके अंदर एक शंका उत्पन्न हुई है। गुरु को प्रणाम करके माँ के पास जाती है, माँ का अभिवादन करती है और कहती है कि माता धर्म के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो गया। तब रानी निपुण सुंदरी कहती है कि तुझे मेरे सामने आने में लज्जा नहीं आती और तू अपने मुख से मेरे साथ बात कर रही है, धर्म के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो गया। मैं मान ही नहीं सकती इस असत्य को, मुझसे झूठ बोलती है। चल हट जा मेरी आंखों के सामने से, चले जा। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है, मंदिर में मुझे कहना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तू पैदा होते ही मर के नहीं, आज तेरा कलंकित मुखड़ा तो मुझे नहीं देखना पड़ता। मैंने सुंदरी कहती है कि माता, इस जनालय में देव शास्त्र गुरु तीनों विराजमान है। मैं उनकी शपथ पूर्वक कहती हूँ कि आपको जो शंका है वो निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप समझ रही हैं। माता, मैं कभी स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकती जिसकी आपको आशंका है। रानी कहती कि मैं बोलना बंद कर दूँ, मुंह बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना के लिए। तो उस समय श्रीपाल को लगता है कि मुझे बीच में जाना जरूरी है और श्रीपाल गुरु को प्रणाम करके वहाँ से उठते हैं और फिर आकर के कहते हैं कि हे महारानी, आप मुझे नहीं पहचानती ठीक है, क्योंकि मेरा रूप बदल गया है, लेकिन मेरे स्वर को तो पहचानती है। आपने मुझे बोलते हुए भी नहीं सुना उस समय जब मैं वर राजा बनकर के आया था, मेरा वार्तालाप हुआ था आपके साथ और फिर तातश्री के साथ। तब भी उसके मन में शंका रहती है, हो सकता है कोई नट हो या कोई ऐसा शरारती व्यक्ति हो जो आवाज बदल करके दूसरी आवाज में बोल रहा हो। अनेक अनेक प्रकार से श्रीपाल को समझाते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता। अब अंततः श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि माता, आपको यदि हम पर विश्वास नहीं है तो आपको गुरु पर तो विश्वास है। आप गुरु से पूछ लीजिए, ये विद्धिधारी अति ज्ञान से संपन्न गुरुदेव है, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ सकता है, सुमेरु पर्वत कदाचित कंपित हो सकता है, लेकिन ऐसे साधु कभी असत्य वचन नहीं बोल सकते। तो गुरु इस दृश्य को देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे, वो सारा स्पष्टीकरण करते हैं, बोले कि तंदुरुस्त का प्रभाव तुम्हें आश्चर्य होगा क्योंकि ये सत्य है। और ब्रह्मचारी नंदलाल जी ने ऐसा लिखा है कि श्रीपाल ने अपने अंगूठे को ऐसे थोड़ा सा बचा के रखा था जहाँ तंदुरुस्त बिल्कुल नहीं लग पाया था, तो उसमें थोड़ा सा कुष्ठ का अंश शेष रह गया था, तो वो दिखला करके श्रीपाल ने उनकी सारी शंका को निर्मूल कर दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर तत्काल सती मैना सुंदरी कह रही है कि देखो, ये भी मेरा भाग्य है, तो अब बंदोलन से इसको ठीक होते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लेंगे। रानी को विश्वास हो जाता है कि ये मेरे जमाई है, तो वो अपनी खुशी को अपने अंदर न समेटते हुए तत्काल राजा को खबर भेजती है और राजा वहाँ पहुँचते हैं और फिर एक आयोजन होता है सिद्ध चक्र विधान का। और फिर वो भी अष्टांगिका का समय था, उस समय फिर गंदोदर लेकर के जैसे ही मैना सुंदरी श्रीपाल के अंगूठे पर डालती है तो वह खुश क्षण मात्र देखते देखते विलीन हो जाता है, पूरा स्वर्णिम आभास है। चकमा होता है। अब इस दृश्य को देखकर राजा के धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन फिर भी मैना सुंदरी का मन राजा के प्रति थोड़ा सा मलिन था। मैना सुंदरी को लगता था कि इनकी देवशास्त्र गुरु के प्रति वो आस्था नहीं है जो होनी चाहिए। ये तो चमत्कार देख करके विश्वास कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग चमत्कार को नमस्कार करने वाले इस धरती पर होते हैं, मेरे पिता सच्चे श्रद्धालु नहीं है, ऐसा मैना सुंदरी के अंदर भाव था। इसके बाद फिर श्रीपाद सानंद महाप ने उस उज्जैनी के महल में जो एक बड़ा भवन बना उसमें निवास करते हैं। और चूँकि समय अच्छा जो समय होता है, सुख का समय निकलने में देर नहीं लगती, तो ये पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। और उधर चंपा नगरी में माता पुण्यप्रभा जब ये समाचार प्राप्त करती है कि मेरा पुत्र उस उद्यान को छोड़कर कहीं दूर चला गया, तो बड़ी चिंतित हो जाती है। और अंततः एक दिन उसकी चिंता सीमा को पार कर जाती है और वो पुत्र को खोजने के लिए स्वयं निकल पड़ती है। और यहाँ पर श्रीपाल बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। सो एक दिन सायंकाल श्रीपाल अपने उस भवन पर ऊपर के खंड में खड़े होकर बाहर की शोभा देख रहे थे, तो दूर से रथ पर आती हुई अपनी माता को देखकर वो तत्काल पहचान लेते हैं, गुरु ये तो मेरी पूज्य माता श्री है। तीव्र गति से वो ऊपर से नीचे उतरते हैं और नंगे पांव उस भवन से बाहर दौड़ पड़ते हैं और माता के रथ के सामने आकर रथ को रोक लेते हैं और माँ के चरणों से लिपट जाते हैं। माँ श्रीपाल को देखकर पूछती है कि बेटे तू ठीक हो गया और फिर मुझे भूल गया। श्रीपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन माँ मैं आपको कभी नहीं भूला, लेकिन क्या बताऊँ ऐसी ऐसी स्थिति बनी और मेरा विवाह भी हो गया, अब माँ की खुशी का कोई पार नहीं था। फिर श्रीपाल अपने उस भवन के लिए जाकर के माँ को अपनी पत्नी से मिलाते हैं और पत्नी को अपनी माँ से, और वो भव्य मिलन होता है। सब लोग आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ समय सानंद व्यतीत होता है और एक रात श्रीपाल की नींद टूटती है। और नींद टूटने पर श्रीपाल मन में विचार करते हैं, चिंतित हो जाते हैं। अब सती भी उठ जाती है, पूछती है पैर दबाते हुए क्या बात हुई स्वामी, आज आप चिंतित क्यों हैं? तो बोले यहाँ पर मेरे सब लोग राज जमाई कहते हैं, राजा का जमाई कहते हैं, मेरे पिता का नाम कोई नहीं लेता। अब इसके बाद क्या होता है बाद में देखेंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, अरे हम।